कर्मकांड शिविर में जन्म विचार आगे बढ़ते हैं। अभी हम आए थे पृष्ठ संख्या 85 पर 85। कोई भी विषय सीखना है तो उसका अच्छी तरह से निर्णय होना चाहिए। तत्वार सूत्र में भी हमने देखा प्रमाण नय और निक्षेप से वस्तु को अच्छी तरह से जानना चाहिए, उसका निर्णय होना आवश्यक है। क्योंकि यदि निर्णय नहीं है, कुछ भी संशय चल रहा हो या विपरीत बना चल रहा हो तो समय दशम तो नहीं हो सकता। तो यहां हम पढ़ेंगे कि श्रोता तीन प्रकार के हैं। 85 पेज पर सुनने वाले श्रोता तीन प्रकार के बताए हैं, पढ़ने वाले तो और कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है पढ़ने में, क्या है अपने में जो कल्पना, अपनी जो आइडिया है, अपने जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय को कायम रखकर हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो उसमें बहुत गड़बड़ी भ्रांतियां भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सुनने में तो एक है कि सामने वाले के जो मुख पर उसकी जो प्रश्न चिन्ह दिखता है या उसकी कोई प्रश्न है तो तत्काल उसका निराकरण ही तो हो सकता है, और जो वक्ता है वो कहाँ जोर दे रहा है, वाक्य पर क्या कह रहा है, उसके अनुसार उसका अर्थ भी भाषित होता है। पढ़ते समय ये बातें नहीं है तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ कहते सुनने वाला श्रोता तीन प्रकार के हुए होते हैं, अव्युत्पन्न, अवगत अशेष विवक्षित पदार्थ, ये कितना बड़ा विशेषण बना है उसका, और एक देशत अवगत विवक्षित पदार्थ, अभी उसका वर्णन कर रहे हैं। पहला कौन सा है, अव्युत्पन्न श्रोता, उसको तो मूर्ख बने से विवक्षित पदार्थ का विचार ही नहीं है, यह ऐसा ही है, इस प्रकार के यथार्थ प्रतीति की उसको अप्राप्ति है। उस संबंधी कोई विचार नहीं, कोई निर्णय करने की भी नहीं कोशिश की। जैसे अभी दृष्टांत देके समझाते, गमन करते हुए पुरुष को तृणों का स्पर्श हुआ, वहां कुछ उसके तृणों का विचार नहीं है, यानी कुछ तो लगा इतना ही कहीं है, कुछ तो क्या था कुछ पता नहीं, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ इतना तो ज्ञान हुआ, परंतु उस संबंधी पदार्थ संबंधी निर्णय नहीं है। तो कहते तृणों का विचार नहीं, वैसे अव्युत्पन्न श्रोता सुनते हैं परंतु उनके विचार नहीं है, उसका अर्थ ख्याल में लेते नहीं है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसको नहीं लेते हैं, तो उसको कहेंगे उसका विचार नहीं, इसलिए उनके तो अनध्यवसाय पाया जाता है। ये मिथ्या ज्ञान के तीन लक्षण बताते हैं, कौन से तीन, हाँ संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। विपर्य विपरीतता, विपरीतता के भी तीन भेद है, मालूम है ना, हाँ, कारण विपरीतता, सुविधा विपरीतता, भेदाभेद। तो यहाँ तो अन्नदेव से संबंधी कोई विचार नहीं, उसका कोई निर्णय नहीं। अब दूसरा श्रोता बताते हैं जो संशय वाला है, जिसने अपनी बुद्धि से सर्व कथित अर्थ जाना, ऐसा दूसरा श्रोता संशय उत्पन्न करता है। जैसे किसी ने खेत में दूर से पुरुषाकार देखकर संदेह किया कि यह मिट्टी का स्तंभ है कि पुरुष है, वैसे यह जो अर्थ सुनता है वहां इसके सामान्य भाव तो प्रत्यक्ष है, विशेष भाव अतिशय ज्ञान के अभाव से प्रत्यक्ष नहीं है। और यह दोनों का विचार करे, वहां ऐसा है कि ऐसा है, इस तरह संशय को उत्पन्न करे ही करे। यानी वो दोलायमान वाला बताया, ये ऐसा है कि ऐसा है, उसका निर्णय नहीं कर पाता है। पेंडुलम की तरह एक बार इधर एक बार इधर, ऐसा अरे ये होना चाहिए नहीं ये होना चाहिए, इस तरह से संशय उसका मिटता नहीं है। अथवा तीसरी बात, कथित अर्थ अन्य हो उसे और अन्य प्रकार से ग्रहण करके, यानी कहा कुछ अन्य और इसने उल्टा ही ग्रहण कर दिया। पहले तो कैसा था, ऐसा है कि वैसा है, दोनों ओर उसकी बुद्धि पलट चुकी। अब इसने ग्रहण तो किया नहीं ऐसा है, पर कैसा, जैसा बताया बिल्कुल उसके उल्टा। विपर्य रूप प्रवर्तता है, जैसे सीप के टुकड़े में रूपा है मानना, वैसे इसके सामान्य तो प्रत्यक्ष है, विशेष प्रत्यक्ष नहीं है, तथा इसके विपरीत विचार होता है, इसलिए कथित अर्थ को अन्यथा निश्चय करता है। कैसा अन्यथा निश्चय करता है, नहीं नहीं शुभ भाव से ही मोक्ष हो जाएगा, वो क्या किया उसने, विपरीत मान लिया, जो बंध का कारण है उससे मोक्ष का कारण मान लिया। इस तरह इस दूसरे श्रोता के संशय और विपर्य दोनों पाए जाते हैं। तो कहते हैं तीसरा जो बताया, एक देश पने से कथित अर्थ को जाना, ऐसा तीसरा श्रोता भी दूसरे श्रोता के समान संशय विपर्य रूप प्रवर्तता है। यानी यह सुनकर उसका यथार्थ निर्णय जब तक नहीं होता है तो ये भ्रमणा चलती रहती है, इसलिए इसको दूर करने के लिए, सही अर्थ ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो कहते हैं इसलिए अयथार्थ का निवारण करने के लिए, दूसरी बात यथार्थ प्ररूपणा करने के लिए, तीसरी बात संशय का नाश होने के लिए, और चौथी बात तत्व के अवधारण के लिए, अवधारण करने में उसको जानना सही रूप से, सामान्यादि भेद तथा भेदों के भेद रूप कर्म कहे। यानी अभी के हमने नाम देखे, उसके जुदे जुदे भेद देखे, घाती अघाती देखे, घाती में भी सर्वघाती देशघाती के, प्रशस्त प्रशस्त, कौन से विपाकी वाले, सब अन्य अन्य भेद करके हमने बातें यहाँ देखी। अब इसका नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपों द्वारा कथन करते हैं, यानी उन्हीं पर अभी निक्षेप लगाएंगे। कोई भी विषय जब आप करणानुयुक्ति कोई ग्रंथ निकाल कर देखना, कोई विषय हम लेते हैं तो पहले उसको ये सभी निक्षेप लगाते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, और इस निक्षेपों के द्वारा वस्तु की वो सही हमें पहचान हो सकती है। तो कहते यदि कथन न करेंगे तो उनका मन संशयादि रहित नहीं होगा, इसलिए कथन करते हैं। और प्रथम ही नामादि निक्षेपों का कथन करेंगे, ये बात हमने पहले भी देखी थी, यहाँ तो ज्ञान मार्ग नाम भी इसको लिया था, निक्षेपों को डिटेल में लिया था, अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। शॉर्ट में अगर देखना है तो किसी का नाम रख देना, हम चाहे अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम कर्म भी रख दिया तो नाम निक्षेप से हम कर्म कहेंगे क्यों, क्यों नहीं रख सकते क्या? निक्षेप नहीं रखना, निक्षेप करना, जैसे हमने कर्म में कहते हैं ऊपर के कर्म या हो गया उसका स्थिति घटी और नीचे निक्षेप कर दिया, गुण श्रेणी का निक्षेप, निक्षेप नहीं डालना। गेय में ये रखे जाते हैं, जो पदार्थ जिस विषय है हमारा वस्तु है जिसको हम जान रहे हैं, इसमें ये नाम रखते हैं वस्तु का, या वो किसी वस्तु में अन्य वस्तु की स्थापना करते हैं, यानी वो वस्तु में होता है, ज्ञान में नहीं होते हैं। श्रोताओं का वर्णन इसलिए किया है कि ये श्रोताएं ऐसे अज्ञानी रहते हैं, ये अज्ञान का निवर्तन करना आवश्यक है। इसलिए निक्षेपों की ऐसे श्रोताओं का ज्ञान सही होने के लिए ये चार बातें बताए ना, किस लिए कर रहे हैं। तो उसलिए उन्होंने कर्मों के इतने सारे भेद प्रभेद क्यों बताए कि उस संबंध में कोई हमें कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए इतने सारे विस्तार से ये प्रकृति समुत्कीर्तना जो की है, उसके नाम बताए, भेद बताए, उसके और भेद बताए, प्रशस्त प्रशस्त, इसके लिए सब पर यथार्थ प्ररूपणा करने के लिए और यथार्थ का निवारण करने के लिए, संशय का नाश करने के लिए और तत्व का उदाहरण करने के लिए। यहाँ तो हमारा विषय कर्म संबंधी चल रहा है, तो कर्म संबंधी जो कोई हमारे जो मान्यता है उस संबंधी उसके विवेचन करने के लिए बात की। अब ये कर्म का विषय अभी निक्षेपों के आधार से यहाँ बात चलेगी, उस पर निक्षेप चलेगी। किसी भी वस्तु कोई भी विषय हो, वो शुद्ध ज्ञान का हो या अन्य कोई हो या कर्म का हो, उसमें ये चारों ही प्रकार के निक्षेप लगाए जाते हैं। तो नाम रखना, उसका नाम बताना, नाम निक्षेप हुआ। एक वस्तु में दूसरे का उपचार करना, वो स्थापना निक्षेप हो जाता है। एक ही वस्तु को उसके पूर्व या भविष्य पर्याय के द्वारा वो उसको वर्तमान में वैसा पहने हुए द्रव्य निक्षेप, और वर्तमान जिस रूप से पर्याय है उस रूप से उसको देखना, वो है भाव निक्षेप। उसकी बात यहाँ करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं इसको, देखो 86 पृष्ठ। तद्गुण नहीं है ऐसा जो पदार्थ, उसमें व्यवहार की सिद्धि के लिए मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार संज्ञा दे, नाम रखे, वहां नाम निक्षेप है। किसी वस्तु का कुछ नाम रख देना ही उसका नाम निक्षेप है, क्योंकि उसको ला, उसको ला, किसको ला, तो कुछ हर एक चीज का कोई ना कोई हम नाम देते हैं। इसको माई का, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये नाम रखे उसके, वो चीजों को पहचानने के लिए। ये इसे बच्चों को भी, हम हमारे चार बच्चे हैं तो कैसा कहेंगे उसको, आप कहेंगे नंबर देंगे पहला दूसरा तीसरा, वो भी उनका नाम ही हो गया ना। तो ये नाम रखना, उसमें कोई वहां कोई गुणों की अपेक्षा नहीं है, यानी वो कोई गोरा है तो उसको हम कृष्ण भी नाम दे सकते ही नहीं दे सकते, यानी वहां कोई अपेक्षा नहीं है कि उसमें वो गुण चाहिए। अभी तो सर्वज्ञ और क्या क्या नाम भी देते हैं ना बच्चों के, अरिहंत भी नाम देंगे, वो थोड़ी अरिहंत पर्याय वाले जीव, परंतु उसमें कोई दोष नहीं है। इसको नाम निक्षेप कहते हैं।
ज्ञान का विषय के जो है वो निक्षेप,
हाँ गेम ही होते हैं निक्षेप। निक्षेपों के जो व्यवहार के लिए उसमें ये डाले जाते हैं, नाम डालना, स्थापना करना, ये सब व्यवहारिक लौकिक प्रयोजन के लिए होते हैं निक्षेप। आगे देखते हैं। तदाकार या अतदाकार, काष्ठादि में, काष्ठ है कोई, चित्र है कोई, अन्य जो है उसमें विवक्षित पदार्थ है, इस तरह अपने परिणामों द्वारा स्थापना करे, वह स्थापना निक्षेप है। ये तो हमें मालूम है, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति बनाई पाषाण की, और फिर ये हमारे महावीर भगवान है, ऐसे हमने उसमें स्थापना की अपने परिणामों के द्वारा, उसको स्थापना निक्षेप करेंगे। और फिर वहां पर हम साक्षात भगवान है, इस तरह से उनकी विनय, उनकी पूजन, उनके सभी हम करते हैं। ये क्या है सब, स्थापना निक्षेप है, जिसमें आगामी काल में गुण प्रकट होगा, ऐसा पदार्थ द्रव्य निक्षेप के गोचर है। जैसे अभी श्रेणी करा जा, किसी ने पूछा हमारे भविष्य के पहले तीर्थंकर कौन है, हम कहते श्रेणी करा जा, परंतु वर्तमान में पहले नरक के नारकी है, उसको हम या तो भूतकाल की पर्याय से श्रेणी राजा कहते हैं, या भविष्य काल की पर्याय की अपेक्षा द्रव्य तो वही का वही है, तो उसको हम पहले तीर्थंकर कहेंगे। वो अभी वो तीर्थंकर नहीं है, परंतु उसमें होने वाले हैं, उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। वही द्रव्य की भूत या पर्याय, भविष्य की पर्याय के द्वारा वर्तमान में उसको, उस द्रव्य का उपचार करना, जिसमें वर्तमान काल में तद्गुण रूप पर्याय पाई जाती है, उसको वस्तु भाव कहते हैं, भाव निक्षेप है। वर्तमान में वो पर्याय है, तभी उसको हम उसको बताएंगे। वैसे अभी हमको ये कर्म पर बताना है, देखो पेज नंबर 87 पर आना। ये तो सामान्य से निक्षेप लगाते हैं, तो उसमें नाम सामना, द्रव्य और भाव, ये क्या है उसकी चर्चा की। ये सामान्य से निक्षेपों की चर्चा हुई। अभी हमको ये कर्मों के ऊपर निक्षेप लगाने हैं। तो उसमें सामान्य कर्म नाम स्थापना द्रव्य भाव के भेद से चार प्रकार का है। वहां प्रकृति या पाप या कर्म या मल, ऐसा जो नाम, वह नाम मल अर्थात नाम निक्षेप रूप कर्म जानना, यानी ये कर्म ये नाम रखना ये नाम निक्षेप रूप कर्म हो गया। अभी स्थापना में हमने कह दिया ये हमारा ज्ञानावरण कर्म है, ये दर्शनावरण कर्म है, ये मोहनीय कर्म है, किसी वस्तु में कुछ कह दिया, वो क्या हुआ? स्थापना हो गई, है ना। सदृश अर्थात कर्म समान, असदृश अर्थात कर्म समान न हो, ऐसे किसी द्रव्य में, पदार्थ में बुद्धि द्वारा ऐसी प्रतिष्ठा करना, यानी स्थापना करना कि जीव के समस्त प्रदेशों के समूह रहने वाला सामान्य कर्म यह पदार्थ है। कहाँ रहता है वो कर्म? समस्त प्रदेशों में। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां कर्म नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कर्म नहीं है, सभी प्रदेशों में कर्म है। यह लिखा ना, समस्त प्रदेशों के समूह में रहने वाला, उसे स्थापना निश्चय रूप कर्म कहते हैं। ये दोनों तो समझने में आसान। अभी जो द्रव्य निक्षेप है, यानी द्रव्य निक्षेप से कर्म, ये किसको कहना? अभी यहां कर्म किसको कहेंगे, या जीव को कहेंगे या अन्य किसी को कहेंगे? उसमें भी दो बातें हैं। जहां जहां द्रव्य निक्षेप लगाते हैं वहां दो नाम आते हैं, एक आगम और एक नो आगम। आगम का अर्थ ऐसा है कि कर्म संबंधी आगम को जानने वाला जीव, उस जीव को यहां कर्म कहेंगे। कर्म संबंधी आगम को जानने वाले जीव को कर्म कहेंगे, परंतु वो जीव कहां? द्रव्य निक्षेप में उस कौन से जीव को लिया कि कर्म संबंधी आगम को जानने वाला है, पर वर्तमान में उसमें उसका उपयोग नहीं है। वर्तमान में उपयोग कहां है? कुछ भी, अभी टीवी देख रहा है, कुछ भोजन कर रहा है, वर्तमान में उसका उपयोग वो आगम में नहीं है। उस जीव को द्रव्य निक्षेप से हम आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे, तो उसका नाम ही आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। किसको कहेंगे? जीव को। कौन से जीव को? जो कर्म संबंधी आगम का जानकार है परंतु उसमें उसका उपयोग नहीं है, ऐसे जीव को आगम द्रव्य कर्म, यानी आगम द्रव्य निक्षेप से उसको कर्म कह दिया उस जीव को। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ लिखा है ना पहला
कर्म
पूरा, उसका नाम है आगम द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म द्रव्य संबंध सॉरी कर्म संबंधी आगम को जानने वाला जीव, जिस समय वो उसमें उपयोगी नहीं, उपयुक्त नहीं है, उसका उपयोग अन्यत्र है, उस जीव को आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। द्रव्य नहीं, वो तो आठ कर्म वाला द्रव्य कर्म नहीं, आगम को जानने वाला वो द्रव्य निक्षेप से, उसको आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे उस जीव। अब यहाँ नौ आगम में लिया, इसके दो भेद है द्रव्य कर्म के। द्रव्य निक्षेप जब लगते हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नौ आगम द्रव्य निक्षेप। आगम से तो हमने जीव को देखा जो उस विषय संबंधी आगम का ज्ञाता है, उपयोग अन्यत्र है। अब ये नौ आगम वाला क्या है? नहीं जानने वाला, इसका लेना है। तो नहीं जानने वाले में क्या हो सकता है? नहीं जानने वाले में उस जीव का शरीर जो है वो भी हो सकता है, शरीर कुछ नहीं जानता, या जीव भी जो है अभी तो नहीं जान रहा, भविष्य में कभी जान सकता है, और इनको छोड़कर जीव भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, इनको छोड़कर अन्य भी कुछ हो सकता है। तद्व्यतिरिक्त नौ आगम में तीन भेद करेंगे। नौ आगम द्रव्य निक्षेप उस पर लगता है, आगम संबंधी नहीं जान रहा है। कौन नहीं जान रहा है? जीव का शरीर, उसका नाम है ज्ञायक शरीर। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर, शरीर ज्ञायक नहीं है। जानने वाले जीव का शरीर, उसको उस शरीर को भी द्रव्य निक्षेप से हम कह दिया नौ आगम द्रव्य कर्म। ये समझ में आ रही बात? जानने वाले जीव के शरीर को कह दिया नौ आगम द्रव्य कर्म। अब ऐसा जीव भी लिया भावी नुआगम द्रव्य कर्म, कैसा है वो अभी नहीं जान रहा है, पर भविष्य में वो जानने वाला है,
जानने वाला,
और अभी नहीं जान रहा है इसलिए उसको नुआगम नाम दिया। नुआगम क्योंकि कर्म संबंधी आगम का ज्ञाता नहीं है, परंतु भगवान के ज्ञान में तो है ना, वो भविष्य में जानेगा, इसलिए उसको कहने में आता है नुआगम द्रव्य कर्म, भावी नुआगम द्रव्य कर्म। देखो फिर से सुनना, द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए, आगम और नुआगम। आगम में उस संबंधी आगम का ज्ञाता उसमें उपयोग से रहेगा, ये जीव लिया। नुआगम में क्या लिया, उसका शरीर लिया, या ऐसा जीव है कि जो अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा, या जीव और शरीर को छोड़कर अन्य जो कुछ बातें उसको भी हम इसमें नुआगम तद व्यतिरिक्त में ले लेंगे। वो जीव और शरीर को छोड़कर अन्य क्या हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, और कर्म में अन्य भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने नौकर में ऐसा लिख दिया। यहाँ नौकर में नहीं, वो शरीर मन वाला है, वो नरक में यहाँ नहीं लेना, अभी नौकर में इतना ही ले लो, कर्म और कर्म नहीं है ऐसा हमने जो कुछ। और देखो इसमें भी बहुत सारे विस्तार है, अभी पुस्तक में भी बहुत सारे विस्तार दिए है। जो जीव का जो शरीर है वो कौन सा हो सकता है, जो वर्तमान में उसका शरीर है उसको भी कहेंगे, उसी जीव के भूतकाल की जो पर्याय है, वो जो शरीर जो भव छोड़कर आया है उस शरीर को भी यहाँ ले सकते हैं, या भविष्य में जो शरीर धारण करेगा आगामी भव में उसको भी ले सकते हैं। यानी इसके भी तीन भेद करेंगे ज्ञायक शरीर के, भूत वर्तमान और भविष्य वाले, जानने वाले जीव के तीनों काल के शरीरों को, वो शरीर कुछ नहीं जान रहा है उसको भी कर्म संख्या देंगे इस अपेक्षा से। निक्षेप की बात है नहीं, आप किसको क्या कह सकते हैं उसकी बात चल रही है। तो इसके भी हमने तीन भेद किए ज्ञायक शरीर के, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भविष्य ज्ञायक शरीर, भावी जिसको हम कहेंगे। भूत ज्ञायक शरीर है पीछे के, उसके तीन भेद कर देना। भूत जो शरीर जो छोड़कर आया है वो कैसे छोड़ा, आयु पूर्ण करके मरा, कदलीघात से मरा, या संन्यास धारण करके मरा, तो उसको भी चुत चावित और चक्त ऐसे तीन वेद उसके भी होते हैं। ये सारा ये टेबल बना है आपके पुस्तक में, यहाँ तो हमने छोटा ही टेबल बनाया है, उसके आगे के भेद प्रभेद नहीं हुए। इसके भी तीन वेद होते हैं ज्ञायक शरीर के, कौन से तीन वेद होते हैं, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भावी ज्ञायक शरीर। भूत ज्ञायक शरीर के भी और तीन भेद, चुत चावित और त्यक्त, निकालो आपके पुस्तक में उसका उसका वर्णन है, यहाँ पर 88 पर उसका वर्णन है, 88 पर उसका वर्णन देखते रहे। 88 में जो 55 की टीका है ना, दूसरा नौ आगम द्रव्य कर्म है, वह तीन प्रकार का है ना, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर यानी जीव का शरीर, भावी यानी जीव को लिया जो भविष्य में जानने वाला है, और तद व्यतिरिक्त यानी जीव और शरीर को छोड़कर अन्य बात है, वो तद व्यतिरिक्त में, तद व्यतिरिक्त नहीं इनको छोड़कर अन्य चीज है। अब देखो ज्ञायक अर्थात कर्म स्वरूप को जानने वाला जीव, उसका जो शरीर उसको ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। वहां ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है, यानी वो जानने वाले जीव के शरीर कौन कौन से लिए, भूत वर्तमान और भावी, इस तरह त्रिकालगत है। वहां जिस शरीर सहित जीव कर्म स्वरूप को जानने वाला है वह वर्तमान शरीर, इसके पहले जिस शरीर को छोड़कर आया है वह भूत शरीर, तथा आगामी भव में जो शरीर धारण करेगा वह भावी शरीर। वहां वर्तमान शरीर और भावी शरीर ये दोनों सुगम है, उसमें तो कोई भेद नहीं किया। वर्तमान शरीर को तो धारण कर ही रहा है और भावी शरीर आगामी काल में धारण करेगा ही। अब भूत शरीर जो छोड़कर आया है वो किस किस प्रकार से शरीर का त्यजन होता है उसकी अपेक्षा से उसके तीन भेद बताए। 56 की टीका देखो, ज्ञायक का जो भूत शरीर है वह तीन प्रकार का है, भूत है ना, भूत काल में इसके पहले पड़े है, वो भूत वाला वो कोई नहीं, इमेजिन नहीं करना चाहता। चुत चावित और त्यक्त, वहां अन्य कारण बिना अपने ही अपने उदय ही से शरीर छूट जाए, नष्ट हो, उसे चुत कहते। आयु पूर्ण हो गई बस उसको शरीर छूट गया, वो चुत। इसलिए यह शरीर कदलीघात अथवा संन्यास इनसे रहित जानना। ये कदलीघात क्या है कि हमने बहुत बार चर्चा की है यहाँ अपने शरीरों में। कदलीघात यानी पूरी आयु तो बांध कर आया है, बहुत लंबी आयु बांध कर आया है, परंतु किसी कारणवश क्या होता है उसकी कदलीघात होते हैं, ऊपर के निषेकों को घात होकर वो सारे निषेक के निषेकों में आ मिलते हैं और फिर वहाँ आयु का बंधन होकर उसकी अल्प आयु में मरण हो सकती है। इसको कहते हैं कदलीघात, यानी किसी उपसर्ग के द्वारा, विषभक्षण के द्वारा, कोई अन्य कोई वाय इस तरह से उसका हो सकता है। तो ये कदलीघात का उन्होंने लक्षण बताया है। यहाँ पर आते 89 पेज पर, विषर तीव्र वेदना, रक्त का क्षय, तीव्र रक्तस्राव, तीव्र भय, शस्त्र से घात, क्रोधादि रूप तीव्र संक्लेश, श्वासोच्छ्वास का रुकना, आहार का रुकना आदि कारणों से यदि आयु का छेद यानी नाश हो जाए उसे कदलीघात कहते हैं। अब जो भूत शरीर जो कदलीघात से छूटा हो तो उसको क्या कहेंगे, चावित। और संन्यास में क्या है, देखो कभी कभी जिसको हम समाधि मनन कहते हैं, संन्यास धारण किया है, छोड़ा उसने, अपने आत्मा में स्थित होकर उसको शरीर का त्याग किया, हो सकता है उस समय उसका कदलीघात से मरण हो रहा हो, यानी एक्सीडेंट हुआ है और उस समय वो आत्मा में उसका शुद्ध उपयोग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो कदलीघात होने पर भी उसने संन्यास से शरीर छोड़ा, ये उसका है। या कदलीघात नहीं हो रहा है इसे भी उसने संन्यास धारण करके छोड़ा है, ये उसका है, उसको त्यक्त कहेंगे। उपसर्ग में भी, बिना उपसर्ग में भी ये हो जाते हैं, शरीर छोड़, संन्यास से छोड़ दिया, संलेखना जाने का ये हो सकता है कि अभी मरण यानी वृद्धा काल है या कोई अन्य जो रोग है, इस तरह से कदलीघात होता ही ऐसा नहीं, उतनी आयु लेकर आया है और उसने अंत समय में संन्यास धारण कर दिया, उसको भी कहते हैं त्यक्त। अभी उसमें भी बहुत प्रकार है, उसके डिटेल में जितना जाओ उतने और भी है। जो शरीर छोड़ा है उसमें भी भक्त प्रतिज्ञा, इंद्रिय निवारण, प्रायोगिक, वो सब उसमें वेद के प्रभेद के प्रवेश हो गए, उसको भी हम छोड़ देते। इसमें उसकी बहुत विस्तार से चर्चा है, उसकी अभी नहीं हम करेंगे चर्चा। अब ये तव्य अतिरिक्त में क्यों लेना है, कर्म, और दूसरा है नो कर्म। देखो कर्म और नो कर्म यहाँ जो विशेषता है ना, हम हमेशा द्रव्य कर्म आठ कर्मों को कहते हैं, भाव कर्म में जीव के राग द्वेष के परिणाम देते हैं और नो कर्म में शरीर मन वाणी आदि को लेते हैं। यहाँ कुछ विशेषता है, यहाँ कर्म का उदय में जो निमित्तपना बनता है जीव के भावों के साथ या अन्य जो कुछ संयोगों के साथ, उसमें क्या होता है, उसमें बाह्य कोई कारण उसमें निमित्त रूप से पाया जाता है। यहाँ पाठ बात करके यहाँ कहेंगे, देखो उसकी बात आगे चलती है, थोड़ी आगे जाती है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। कर्म तो समझते हैं ना, जानने वाला नहीं हो, शरीर शरीर को भी लिया, जीव जो भविष्य में जानेगा, और तद्व्यतिरिक्त में कर्म और नौ कर्म को लिया, वो जानने वाले में तो नहीं, इसलिए सबका नाम क्या है, नौ आगम। नौ आगम में तीन भेद देखे थे आपको याद है, ज्ञायक शरीर, भावी ने जीव को लिया, तद्व्यतिरिक्त में कर्म नौ कर्म को लिया। ये नौ कर्म की बातें भी हम कौन करके उसकी बाद में बात करेंगे, ये तो तीन भेद हो गए। आगे बढ़ते पेज नंबर 91 पर नीचे का पैराग्राफ, यह नौकर्म की बात बताई है उन्होंने। देखो कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, अभी हमने देखा ना ज्ञानावरण का कार्य क्या है, दर्शनावरण का क्या है, भूमि का अध्ययन में हमने कार्य देख लिए, उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य जो वस्तु उसे नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जान। ये लंबे लंबे नाम आते हैं, हम अपनी भाषा में, मेरी भाषा में मैं कहती हूँ उसको, ये कर्म का एजेंट है, नहीं समझे, एजेंट एजेंट, इसको कर्म का नो कर्म कहते हैं। कैसे हम पूछते भी ना, जब हम शुरू शुरू में अध्यात्म का कुछ मालूम नहीं था, और जब कहते निमित्त से कार्य नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हमसे दे देखो यहाँ इंजेक्शन दे दिया और जीव तो कुछ पता नहीं चला, ऑपरेशन भी हुआ उसका, तो उसका ज्ञान तो हीन हो गया कि नहीं हो गया, तो उसने कार्य किया कि नहीं किया, बाह्य वस्तु ने कार्य किया कि नहीं किया, तो निमित्त को ही देखना है तो कहेंगे नहीं वहां ज्ञानावरण की ऐसी हीन दशा। उपादान में देखना है तो हम जीव की योग्यता को देखेंगे, पर निमित्त को देखना है तो नियम रूप निमित्त क्या कहेंगे, वो ज्ञान आवरण कर्म का वैसा, उसकी आवरण ज्यादा आ गया, उसका उदय जो कुछ करेंगे उसको, तो ये उसका उदय तो यहाँ तो कुछ नहीं पता चलता है हमको, और उसका बाह्य कौन सा हमें निमित्त मिला, वो निमित्त का निमित्त कौन है बाह्य का, तो इंजेक्शन दिया तो वो ज्ञान आवरण का वो नो कर्म कहलाएगा। जैसे साता वेदनी है, साता वेदनी का उदय, तो बाहर कोई किसी पदार्थ का लक्ष्य करके जीव ने वो सुखरूप कल्पना की है, जो इमेजिन किया उसका, तो जो बाह्य पदार्थ है उसको क्या कहेंगे, वो साता वेदनीय का नो कर्म। हर एक कर्म का जो उदय रूप कार्य है, वो कर्म तो दिखाई नहीं देता है, बाह्य जो निमित्त रूप है उस वही दिखाई देते हैं, तो उन अन्य चीजों को कर्मों के नो कर्म कहते हैं। देखो यहाँ कुछ उसके उदाहरण दिए, उसको पढ़ेंगे। नीचे से दूसरी लाइन पेज नंबर 91, नो अर्थात किंचित मात्र, कर्म के समान कारण होने से इसे नो कर्म कहते हैं। अभी नो कर्म की बात आगे बढ़ाएंगे, और एक भाव निश्चय बता दिया उन्होंने ये वाला, भाव कर्म में भी आगम भाव कर्म, अभी आगम में क्या लेंगे, कर्म संबंधी आगम का जानने वाला जीव, उसी में उपयोग वाला उस जीव को वहां मानने की बात नहीं यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, उस जीव, इस शरीर को हम कर्म कहेंगे, किस निक्षेप से उठवाएंगे, नो आगम द्रव्य निक्षेप से हम इसको ही कर्म कहेंगे, नो आगम द्रव्य निक्षेप से हम उस जीव को ही कर्म कहेंगे जो भविष्य में जानने वाला है, नो आगम द्रव्य निक्षेप से हम ये कर्म जो है उसी को कर्म कहेंगे, नो कर्म को भी कर्म कहेंगे, इस तरह से वो निक्षेप होते हैं।
इसमें आगम को फिर अलग क्यों ले लिया,
इसके ऐसे भेद करने की पद्धति है, क्यों लिया है ना, ऐसे इतने भेद प्रभेद है इसलिए इसको लिया, आगम को जानने वाले जीव को, कर्म संबंधी आगम जब को जानने वाले जीव को कर्म कहेंगे, ये यहाँ कह रहे हैं, इसमें ये जो निक्षेप लग रहे तभी हम यहाँ देख रहे थे। भाव निक्षेप यहाँ देख लेते, वो आगम और नवागम, आगम में जानने वाला जीव उसी में उपयोग वाला, और नवागम में इसके अलावा नहीं है। नवागम में कर्म के उदय को या फल को भोगने वाला जीव उसको ले लेते हैं। ये सारा टेबल 92 पेज पर बताया। अभी हम ये जो निक्षेप में भी हमने नो कर्म द्रव्य कर्म वगैरह नो आगम बात बताई ना, जिसको हमने नो कर्म कहा था उसकी बात यहाँ 94 पर बताई है, वहां से जानेंगे, जिसको हमने इसका भेद देखा था। देखो तद अतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म में जो नो कर्म लिया था, यानी इसका पूरा नाम क्या है, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। अब ये क्या है उसकी यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे, यानी अपनी भाषा में कर्म का नो कर्म, मेरी भाषा में कर्म का एजेंट, वो मूल प्रकृतियों में बता रहे हैं। पेज नंबर 94, ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म, इसका पूरा नाम है नो कर्म द्रव्य कर्म। सपीठ वस्त्र है। सपीठ वस्त्र का अर्थ क्या है, कोई चीज है और उस पर हमने वस्त्र डाल दिया तो उसका ज्ञान नहीं हो रहा सही रूप से। जैसे मूर्ति के ऊपर कुछ आवरण डाल दिया, कोई स्टैचू है उसके ऊपर वस्त्र डाल, तो उसके डिटेल्स हमारे ख्याल में नहीं आ रहे, तो वो ज्ञान आवरण का नो कर्म कहने में आता है, ये कह रही है। ये दृष्टांत द्वारा इसको समझाया है, दृष्टांत दिए है। दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म कौन है, द्वार में खड़ा द्वारपाल, ये उदाहरण देते हैं ना, जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन से रुकता है ऐसे यहाँ उसको कह दिया। वेदनीय कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म जो है वो शहद से लिपटी खड़ग की धारा, वो वेदनीय व सुख दुख का कारण है। और मोहिनी कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म मदिरा है, यानी यहाँ दृष्टांत के द्वारा उसका फल की बात बताई है। आयु कर्म का नव कर्म द्रव्य कर्म, मोहिनी के लिए उन्होंने मदिरा का उदाहरण दिया है। आयु का नव कर्म द्रव्य कर्म चार प्रकार का आहार है क्योंकि वो शरीर की स्थिति का कारण है। अब नाम कर्म के नव कर्म जो शरीर आदि वगैरह उसकी बात की है, वो बहुत विस्तार से उसकी बात है। अभी हमें कुछ विशेष बातें आपको इसमें से बताना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं हम पढ़ेंगे। जैसे निद्रा रूप है, वो निद्रा का निद्रा नाम के कर्म है, उसके नौ कर्म कौन है, तो जिन चीजों से ज्यादा नींद आती है ऐसी चीजें वहां ली। देखो यहाँ लिखा है नाइन्टी फाइव पेज पर नीचे है बहत्तर की टीका, पांच निद्रा रूप दर्शनावरण का महिष दध्यर्थान भैंस के दही से लेकर लहसुन खली आदि वस्तुएं नौ कर्म द्रव्य कर्म है क्योंकि ये वस्तुएं निद्रा का कारण है। अभी हम नींद की गोलियां कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, नींद की निद्रा आती है। देखो यहाँ आते 96 पेज पर हाँ, वो कर्म के उदय के जो बाह्य निमित्त है जिसको हम इस तरह से हमेशा घटित करते हैं ना, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं, नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। कर्म तो कहीं कहीं होता है परंतु जो जीव और पुद्गल चलते हैं उसमें कौन सा नियम रूप निमित्त है, धर्म द्रव्य, वो कहाँ कर्म है, समझ में। जो नियम रूप निमित्त है उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं और जो वेरिएबल निमित्त है उसको बहिरंग निमित्त कहते हैं। जैसे समय दर्शन होता है, औपचारिक समय की बात करेंगे तो वो तो दर्शन मुनि और अनंतान मुनि का उपशम हुआ, वो सब जीवों में तो वो नियम रूप है ही है। बाह्य वस्तुओं में जुदे जुदे है, जिन बिंब का दर्शन है, नरक में तो वेदना है, ऐसे अन्य अन्य निमित्त बनते हैं उसके, तो उसका वो बाह्य निमित्त है, उसका वो बाह्य निमित्त है, ऐसा कहेंगे हम उसको, यहाँ बताएंगे हम पढ़ेंगे। देखो 96 पेज पर है ना, 73 की सेकंड लाइन गाता की, साता वेदनीय का नौ कर्म द्रव्य कर्म इष्ट स्वभाव में अन्न पानादिक पदार्थ जाना। हमें जिसमें जिसमें इष्ट बुद्धि है ऐसे पदार्थों का लक्ष्य करते हैं हम, वो साता वेदनीय के उदय तो यहाँ चल रहा है परंतु हम उन पदार्थों का लक्ष्य करके वो साता वेदनीय का उदय कहलाता है। वो पदार्थ कुछ उस उदय के निमित्त से वो पदार्थ है यहाँ पे, उस पदार्थ तो अपने कारण है, यहाँ साता वेदनीय का उदय तो उन पदार्थों का लक्ष्य करके जीव सुख रूप पर होता है। जैसे जैसे मीठा उसको लड्डू बहुत अच्छा लगता है तो लड्डू का लक्ष्य कर करके साता का उदय चल रहा था। इतने में फोन आया, कोई एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ हुआ, तो क्या हुआ, मुंह में तो लड्डू है ना, तो अभी वो साता का काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, अभी कुछ उस न्यूज का लक्ष्य करके उसका दुख रूप परिणाम हो रहा है, यानी किसी वस्तु का संयोग या वियोग वहां नहीं है, साता साता नहीं कहला है, जीव ने उसका लक्ष्य करके वो सुख दुख रूप परिणाम को इसको कहेंगे। उपचार से संयोगों को कह देते हैं ये साता साता के निमित्त से आ गए। देखो इस समय प्रभु जी के यहाँ नवकर्म द्रव्य कर्म बताए 74 की टीका आयतन, ये आयतन और अनायतन सुने ना? आयतन यानी स्थान, जिन जिन मंदिर, जिनागम जिनागम के धारक, तप और तप के धारक, ये सम्यक तो प्रकृति के नवकर्म द्रव्य कर्म है। क्योंकि ये सम्यक तो के चलमलिन अगाड़ पने के कारण है। इन्हीं के बारे में अनेक विकल्प करके वेदक समय दृष्टि चलमलिन अगाड़ होता है। अब जो अनायतन है कौन से, वो कुदेव आदि, कुदेव, कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के धारक, ये मिथ्या तो प्रकृति के नौकर्म द्रव्य कर्म है। अकेला द्रव्य कर्म नहीं, नौकर्म नहीं का, नौकर्म द्रव्य कर्म, यानी निक्षेप लगाकर वो ये बात करे। तो मिथ्या तो प्रकृति यानी इनके निमित्त से, वह मिथ्या तो प्रकृति का उदय तो है ही है व्यापन, और बाह्य में इनका लक्ष्य करता है जीव, इसलिए उनको अनायतन कहते हैं। इनका लक्ष्य करके जीव चलमल नगाड़ भी हो सकता है। ये जिन मंदिर हमने स्थापित किया ये हमारे हैं, यानी उनको ऐसा नहीं कि कुदेवादि के प्रति कुछ भक्तिभाव नहीं आ रहा है, ये हमने मंदिर स्थापनी है, मूर्ति हमने विराजमान की है, उसके प्रति कुछ अधिक लगाव ना, ऐसी बात है। ऐसा नहीं कहेगा कि वो तो मिथ्या ऋषियों के तो मिथ्या देव देवताओं का तो भक्त नहीं होगा, उनके प्रति कोई आराधना नहीं करेगा, परंतु इसमें कुछ मानता नहीं हमारे है, ये हमने नहीं किए, उसके प्रति विशेष लगाव होना। ये चलमलिन अगाड़ दोष अत्यंत सूक्ष्म है, तो ये उदाहरण के तौर पर ऐसा कह देते हैं। यहाँ पर आपको सब मालूम है कौन कौन से क्या क्या करते हैं। ऐसा कहते उसमें तो शांति देने वाले हैं, शीतल ना भगवान शीतलता करेंगे। आगे लिखते देखो, अनंतानुबंधी कषाय के नौ कर्म द्रव्य कर्म मिथ्यात्व आयतन कुदेवादि है। अवशेष 12 कषायों के नौ कर्म द्रव्य कर्म अनुक्रम से देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र के घातक, ऐसे क्या क्या है, काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, कोकादि ग्रंथ तथा पापी पुरुषों का सहाय इत्यादि नियम से जानना। अभी ऐसे अलग अलग जो जो उसके नौ कषाय में भी अलग अलग उसको बाह्य उसके जो कारण रूप वस्तुएं है उसको उसका नौ कर्म द्रव्य कर्म के, यहाँ तो हास्य कषाय का उदय है और बाहर ऐसी कोई चीज देखकर वो हास्य होता है तो उसको उसका नौ कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे। यहाँ शोक का उदय है और वहां बाहर कोई घटना को देखकर या किसी चीज को सोचकर वो शोक कर रहा है तो उसका उसका नौ कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे। ये हर एक में लगा देना, वेदों में भी ऐसा है ना, उस विशिष्ट अन्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ तो उसके उदय है, वेदों का उदय उसका कार्य है, परंतु बाहर कोई अन्य चीज है उसके निमित्त से करता है तो उसको उस कर्म का नौ कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे।
कर्म कहेंगे तो वो सीधा द्रव्य कर्म पर जो कर्म का निक्षेप घटित किया वो घटित होगा।
हाँ, इन चीजों को हम कर्म कह सकते हैं, किस अपेक्षा अमुक अमुक निक्षेप से ये पूरा है, ये लंबा चौड़ा उसका नाम हो जाता है।
जो भाव कर्म है उसका नौ कर्म या द्रव्य कर्म के नौकर्म,
द्रव्य कर्म नौ कर्म, द्रव्य कर्मों के ये सब बातें चल,
भाव कर्म नौ कर्म,
भाव कर्म जो भाव निक्षेप से कर्म है वो भाव कर्म है, राग द्वेष मोह की बात नहीं है। यहाँ जो लिखा है ना ये भाव कर्म है, ये द्रव्य निक्षेप है और ये भाव निक्षेप है, कर्म पर भाव निक्षेप लगा रहे हैं। तो भाव निक्षेप की अपेक्षा किसको हम भाव कर्म कहेंगे, वर्तमान में आगम को जानने वाला जी उसी में उपयोग वाला उसको भी कहेंगे, और नो आगम भाव कर्म जो है वो नहीं जानने वाला है जी परंतु उस भाव रूप से परिणमित होने वाला, वो उसमें नहीं, वर्तमान में जो नौ कर्म द्रव्य कर्म बता रहे हैं तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म की बात चल रही है। उसकी बात करें, उसमें से कर्म और नौकर्म भेद है ना, उसमें से वो नौकर्म वाला भेद बता रहे
हैं।
नहीं ये बहुत सारे एक एक प्रकृति पर लगा रहे हैं, नाम कर्मों पर भी लगाए। देखो यहाँ पर जा 98 पेज पर आना, देखो यहाँ गति मिल गया है, देखो 79 की टीका 98 पेज पर, नरकादि गतियों का नौ कर्म द्रव्य करना, यानी गति नाम कर्म का उदय है और उसमें बाह्य में क्या है लेना, उसको नियम से अपनी अपनी गति का क्षेत्र जानना, ये नरक क्षेत्र ही उसका नौकर्म कहलाएगा।
नौकर्म का ही नौकर्म हो गया ना वर्तमान में
है। नहीं नहीं नहीं, ये सब द्रव्य निक्षेप में जो लगा रहे हैं, अभी हम भाव निक्षेप में गए ही नहीं, अभी हम गति के उदय से हुए नारकादि पर्यायों का उस क्षेत्र के बिना अन्यत्र अभाव है, इसलिए क्षेत्र को नौकर्म द्रव्य कर्म का, उस गति का जो उसका जो गति नरक गति का उदय चल रहा है उसका फल कहाँ मिल रहा है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इसलिए उस नरक क्षेत्र को उसका तद अतिरिक्त नौ कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे, उसका पूरा नाम लेना है तो देखो लास्ट लाइन इस पेज की, कारवां शरीर नाम कर्म का नौ कर्म द्रव्य कर्म विश्रसोपचय है, क्योंकि विश्रसोपचय वो परमाणु कर्म के कारण है। ये विश्रसोपचय का विस्तार से हमने स्वरूप देखा था, क्या होता है वो
दोस्त के
दोस्त। देखो यहाँ जो कर्म रूप परमाणु हो गए हैं और उसका स्कंद कारवां शरीर रूप से पड़ा है, एक एक कर्म परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे अन्य परमाणु जो कर्म रूप नहीं है तो उसके साथ अपने स्निग्ध रुक्ष गुण के साथ मेरी भाषा में चिपके हुए पड़े, उसका स्कंद उसके अपने स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण बने हैं, एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत, तो टोटल कितने होंगे। मुख्य रूप से इसी में से कारमान वर्गणा का ग्रहण होता है दोबारा, मुख्य रूप से, क्योंकि जीव के प्रदेशों के जितना जीव का आकार है, जितने जीव के प्रदेश है, उसके बाहर से एक भी परमाणु जीव ग्रहण नहीं करता, जो कारमान वर्गणा कर्म रूप होती है उतने क्षेत्र में से ही होती है। हाँ, जब कर्म से अकर्म रूप होकर जीव छोड़ देता है तो वो निकलकर कहीं पर भी जा सकती पूरे लोक में, परंतु ग्रहण कहीं भी बाहर से नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे सीखे हैं बचपन में कर्म का आना, इन्हें कहीं बाहर से नहीं आते और कर्म का निकल जाना, निकल जाकर उसी प्रदेशों में रहेंगे, विश्रसोपचय रूप से रह सकते हैं। सब पूरे लोक में
क्या काम आती है
वो वहाँ के जीवों को काम आती है ना पूरा पूरा लोक जीवन से भरा पड़ा है, जहाँ सिद्ध भगवान के प्रदेश है वहाँ पर पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, पांचों एक केंद्रीय जीव,
उनके विश्वसोपचय
हाँ हर एक के विश्वसोपचय है, कारमा का विश्वसोपचय जुदा, तेजस का विश्वसोपचय जुदा, अवधारिक शरीर का विश्वसोपचय जुदा, यानी हरे जीव के साथ ये छह छह राशियां गठे पड़े हैं। कौन सा कारवां शरीर का पूरा स्कंद, तेजस शरीर का पूरा स्कंद, अवधारिक शरीर का स्कंद और हरेक के तीनों के अपने अपने विश्वसोपचय, इसे छह राशियां पड़ी है पूरी,
मात्र विश्वसोपचय में से ही कारवां
ही नहीं कहा, मुख्यतः विश्वसोपचय में से ग्रहण करेगा, वहां जो उसके साथ जुड़े नहीं है ऐसे ही उन प्रदेशों में पड़े हैं उसमें से भी कारमान वर्गणा ग्रहण होगी, ख्याल में आती है ना, परंतु उस जीव का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से बाहर से एक भी परमाणु कर्म रूप नहीं होगा, ये मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि जितने क्षेत्र में उसके राग द्वेष रूप परिणमन है वहीं पर उसी क्षेत्र में जो पड़े हुए परमाणु है उसमें से ही कर्म रूप पड़े, ये जब आएगी बात है सब कहाँ से परमाणु लेता है क्या करता है इसकी बात आएगी।
लेकिन विश्वसोपचय जो रॉ मटेरियल है
तो जैसे कि कोई कर्म अकर्म रूप हो गया है तो फिर वापिस वो विसर सोचे रूप परमाणु बनकर वो विसर
ना, 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 ना। देखो कोई कर्म अकर्म रूप हुआ, हो सकता है वहाँ विसर सोचे रूप से पड़ा रहा, हो सकता है कोई किसी अन्य जीव के शरीर रूप हुआ, क्योंकि वो अकर्म रूप हुआ है, वो जरूरी नहीं कि उसका फिर कर्म ही बने, उसके अन्य स्कंद भी बन सकते हैं, उसकी जो योग्यता के अनुसार उसका अन्य रूप से कुछ भी परिणाम हो सकता है, कुछ तो वहीं पर पड़े रहते हैं तो उसमें से दोबारा ग्रहण भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ का छोड़ा हुआ परमाणु लोकाकाश के किसी अन्य दूर कहीं क्षेत्र में चला गया, उसको भी कोई ग्रहण करेगा, वो वहीं पर पड़ा रहे कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी जा सकता
है। हाँ मतलब वो वापिस अकर्म रूप परमाणु है, वो वापिस किसी ना किसी के विसर स्वच्छ बन सकते हैं,
बन सकते हैं, और उसको विसरत सब चाहिए होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी अन्य स्कंद रूप से हो जाए। अभी ये जो चीज है किसका विसरत सब चाहिए, किसी का नहीं है, समझ में आता है ना, ये विसरत सब चाहिए नहीं, किसी का शरीर भी बन सकता है, किसी का औदारिक शरीर भी बन जाए उसका, या किसी का कर्म भी बन जाए, जरूरी नहीं कि विसरत सब चाहिए रूप हो जाए, क्योंकि उसके कुछ भी जो अपनी योग्यता अनुसार उसके पर्याय कुछ भी हो सकते।
आपने कहा कि जो कर्म बन रहे वो अपने पास जो विसर सोचे है चिपके हुए उसमें से वो कर्म बन जाते हैं, तो जैसे ये आपने कहा कि शरीर का भी ऐसा ही होता है, विसर सोचे होते हैं शरीर के परमाणु के भी विसर सोचे होते हैं, तो ये देह यहाँ पर छूट जाएगी तो उसके साथ ये सारे विसर सोचे भी यहाँ पर ही छूट जाएंगे ना, शरीर के
औदारिक शरीर के विसर सोचे यहाँ पड़े रहेंगे, जीव कर्माण और तेज शरीर लेके जाता है उन दोनों के विसर सोचे साथ में जाएंगे, उसमें से कुछ अपनी योग्यता से छूट भी सकते, क्योंकि उसका जो स्कंद रूप बंद हुआ है अपने कारण से छूट भी सकता है, उसको विसर सोचे नहीं कहेंगे, जो उनके साथ चिपके उनको विसर सोचे कहेंगे, उसमें से कुछ परमाणु उनके उस निग्धता रूपता बदल गई तो उसमें से छूट भी सकते हैं, क्योंकि जीव यहाँ से गमन कर गया तो ये औदारिक शरीर तो यहीं पर पड़ा रहा, औदारिक शरीर के परमाणु के साथ जो अन्य कुछ के थे वो यहीं पर पड़े रहे, ये औदारिक शरीर है, ऊपर वो क्रीम पाउडर सब वो होता है ना, वो क्या होता है
नया शरीर धारण करेगा, नए विश्व सब चलेगा,
हाँ वहां पर नए विश्व सब चलेगा, यानी कितने एक जीव है वहां कितने कितने पुद्गलों के साथ उसका समझ में, जीव तो एक अकेला है, ये पूरा मैं हूँ मान के बैठा है,
और वास्तव में पर से कोई संबंध नहीं,
कोई संबंध नहीं है। हाँ देखो ये बातें अभी हम भाव निक्षेप की बात लास्ट पेज पर समझाते हैं, 100 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, ये भाव निक्षेप से यानी इसको यहाँ लिखना है ना, भाव निक्षेप से ये कर्म है, भाव कर्म का अर्थ क्या है, कर्म पर निक्षेप लगा रहे हैं, वो नाम निक्षेप हुआ, ये स्थापना निक्षेप से कर्म कह दिया, ये द्रव्य निक्षेप से हम इन सबको कर्म कह रहे हैं, और अब भाव निक्षेप से किसको कर्म कहेंगे इसकी बात है, इसमें भी आगम यानी कर्म संबंधी आगम को जानने वाले जीव जब उसी में उसका उपयोग है तब हम उस जीव को हम कर्म कहेंगे, कौन सा कर्म, भाव आगम कर्म, भाव कर्म आगम भाव कर्म, देखो यहाँ लिखा है उसी में उपयोग है,
उपयोग नहीं था,
हाँ उसमें उपयोग नहीं था पर जीव वही था, देखो यहाँ नौ आगम भाव कर्म कहते हैं, पेज नंबर 100 पर आगम भाव कर्म तो समझ में आ गए ऐसी बात है ना, उसी में उसका उपयोग है, और नौ आगम में किसको लेना, 86 की टीका, जिस जिस प्रकृति का जो जो फल है उस अपने अपने फल को भोगने वाला जीव उस प्रकृति का न आगम भाव कर्म जानना, क्योंकि वो जानने वाला नहीं है ना, भोगने वाला ही है ना उसको, जो पुद्गल विपाक की प्रकृतियां है उनका न आगम भाव कर्म नहीं है, क्योंकि उनका उदय होने पर भी जीव विपाक की प्रकृतियां की सहाय बिना साक्षात सुखादि की उत्पत्ति नहीं होगी, ये जीव विपाक की हमने मोहनी कर्म के उसको जीव विपाक की कहा था, तो मोहनी का उदय हो तो ये वेदनी वगैरह वो सुख दुख उत्पन्न करते हैं, ये कहना चाहते हैं। इस तरह सामान्य कर्म मूल प्रकृतियां उत्तर प्रकृति का, इनमें नाम स्थापना द्रव्य भाव चार निक्षेप कहकर यथार्थ स्वरूप दिखाया है। ये पहले अधिकार का नाम है प्रकृति समुद्कीर्त। इसमें हमने प्रकृतियों के नाम ही देखे मुख्यतः, और उसके कुछ भेद प्रभेद उसकी भी चर्चा की, क्योंकि इन नामों से ही अगर हम परिचित नहीं होंगे तो इस संबंधी जो कुछ बातें अभी बताने वाले हैं, गुण स्थानों में क्या क्या बातें होती है, कहाँ कौन सा बंध रुकता है, कहाँ क्या बातें होती है, वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाली बातें हैं, इसलिए इसमें विस्तार से इसकी चर्चा की है। इसके बारे में कोई प्रश्न है तो अभी पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
पेज नंबर 95 के अंदर,
हाँ 95 पेज नंबर,
अवधि ज्ञान और मन का ये ज्ञानावरण कर्म के नौ कर्म बताए कि जिस परिणाम से संकलेश होता है उस पदार्थ के निमित्त से,
देखो
उस पदार्थ को उनका, तो केवल ज्ञानावरण में क्या कहना चाहते हैं?
देखो यहाँ पेज नंबर 95 निकालना, 71 की टीका, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का घात करने का कारण, घात की बात है, अवधि ज्ञान का घात हो जाए तो किस कारण से हो सकता है? संकलेश परिणाम से, यानी अवधि ज्ञान का आवरण है, आवरण का सहकारी कौन होगा? यानी ज्यादा आवरण करने वाला तो उसका कार्य ही घात करने वाला, यानी अवधि ज्ञान का घात करने वाला क्या है? तो संकलेश परिणाम, वह संकलेश परिणाम जिससे हो ऐसा जो बाह्य पदार्थ, वह अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण का नौ कर्म द्रव्य कर्म जानना। ये बात तो ख्याल में आई, आपका प्रश्न है केवल ज्ञान में कैसे लगाना,
मतलब क्यों नेगेटिव,
क्यों नेगेटिव होता है? केवल ज्ञानावरण का नौ कर्म द्रव्य कर्म नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान शायिक रूप का अर्थ क्या है? जैसे अवधि ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ है उसका अवधि ज्ञान नष्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जिसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका कौन से कारण से केवल ज्ञान नष्ट होगा? मुक्षाई के, यानी वहां उसका कुछ अवधि ज्ञान में गिना लिखता हो सकती है, उसका घात हो सकता है। मन परे ज्ञान जिसको उत्पन्न हो तो नष्ट हो सकता है, यानी उसका तो यथा योग्य उसका जो प्रतिपाद कहा है वो हो सकता है, पर यहाँ इसी बात नहीं, इसलिए उसके लिए कोई नौ कर्म द्रव्य कर्म नहीं है, इसलिए उसका घात करने को कारणभूत संकलेश परिणामों को उपजाने वाली कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तभी हुआ पूर्ण वितरकता होने पर। अब ऐसे जीवों को पूरे वो नरक की सारी यातनाएं सब प्रत्यक्ष ज्ञान में आ रही है, कितने जीवों को क्या क्या दुख है सभी उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में झलक रहा है, तो उनको कितना संकलेश होगा? तो ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिनको उनको संकलेश उत्पन्न करे, पूर्ण वितराग हो गए, इसलिए उनको संकलेश उत्पन्न करना है उपजाने वाली कोई वस्तु नहीं है। अवधि मन पर सार्वजनिक है इसलिए वहां संभव है, ख्याल में आती है इसका अर्थ? समझते हैं हम भी, जो हमारा बुद्धि शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान की बात छोड़ो, तभी तो हम इतना पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है ना इतना पढ़ा है अभी सब कुछ भूल जाए, ये पढ़ाई कहाँ गई? तो इसका कोई बाह्य कारण, बीमारी कहेंगे, कोई अन्य बातें करेंगे, या जो कोई किसी संकलेश परिणाम कहेंगे तो उसके कारण भी ये जो ज्ञान हुआ है वो भी जो पर्याय में जो जानने रूप कार्य हो रहा है वो भी नष्ट हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका नौ कर्म द्रव्य का। तो मति शुद्ध ज्ञान की तो बात ऊपर बताई होती है उन्होंने, इंद्रिय के विषम को रोकने वाली जो वस्तुएं हैं उसको वो मति ज्ञान वाले उसका नौकर मत रहे, मति ज्ञान वाले। अभी हम यही रुकेंगे, शाम को बाकी चर्चा आगे की दूसरा अधिकार ले लेंगे हम। बोलो 2400।